अंकुर जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्याशय मुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा परोजिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप भीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण धर्म की आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि महाराज की सोच सकता हूँ। मैंने एक दिन आपसे कहा था हम सब सोच सकते हैं, इसलिए मैं भी सोच रहा था। एक जीता जाता आदमी जीता जागता बिल्कुल, और मरण की बात कहकर चला गया। और मैं ये सोच रहा था कि एक जीता जाता आदमी मैं मरण की बात सोच करके भी जिंदा। फिर कभी इन दो लाइनों पर सोचना, पर मुझे तो लगता है कि चाहे जिंदगी किससे बात शुरू करो तो मरना है, तो चाहे मरने से शुरू करो तो जीना। चलो मरने की बात तो हो गई, इतने रोज हो गए, आज सातवां दिन है, छह दिन से मरने की बात तो सुनी थी, आज जिंदगी की बात शुरू करते हैं जिंदगी से। और जरा जिंदगी को देखने वाली आंख तो हमने पांचवें ही दिन पाली थी। सत्य की आंख से जितनी अच्छी जिंदगी दिखती है उतनी अच्छी मौत भी दिखती है। मौत तो हमने सत्य की आंख से देख ली थी, आज भी देख ली। मौत का सत्य किसी से नहीं छुपा, पर जिंदगी का सत्य देखने की आंख आज फिर से एक बार याद कर ले, वो श्रद्धा की आंख, वो सत्य को देखने की आंख जो पांचवें दिन हमें मिली थी। तो देखेगा था चारों तरफ जीवन, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं उधर दूर मैं देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी आंख में वो पहाड़ आपको दिख रहा होगा, अगर देख सकें तो देखिएगा उसमें जीवन है। वो पेड़ मैं देख रहा हूँ आप देख सकें तो वहीं से बैठे बैठे देखिएगा उसमें जीवन। और इन सब में जीवन देख रहा हूँ और अपने अंदर भी जीवन देख रहा हूँ और आपके अंदर भी जीवन देख रहा हूँ। और अगर इतना तेजी के साथ कोई इतनी गहराई के साथ जीवन देख ले तो शायद मरने का ख्याल भी नहीं रहता, शायद मरने का ख्याल भी नहीं रहता और मर जाता है आदमी। और जब आदमी मरने के ख्याल के बिना मर जाता है तो शायद फिर मरना नहीं रहता, मरण का शायद यही रहस्य है और जीवन का भी शायद यही रहस्य है। आज तो बात जीवन की कर लेनी है, पर जीवन का गणित इतना सरल नहीं है भैया। हम तो बचपन में पढ़ा करते थे, गिनती सीखा करते थे कि दो में दो चार, दो में दो जोड़ो तो चार हो जाते हैं, दो में से तीन घटाओ कुछ बचता, बचता है, माइनस वन बचता है। और ऐसे सीख सीख करके जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना। हम सुनाया करते थे लोगों को कि तुम नहीं जानते हम बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, हम जोड़ लेते हैं कि दो और दो जोड़ो तो चार। उस समय तो हम अपने आप को किसी गणितज्ञ से कम नहीं समझते थे कि देखा दो दो चार जोड़ लेता। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, आप भी बड़े होते हैं, आप भी छोटे में दो और दो चार ही जोड़ते हैं, फिर उसके बाद 2000, 5000, 10000, 25000 पहले संख्याएं जोड़ी जाती हैं, फिर उसके बाद संख्याओं के साथ ये जुड़ना शुरू। पहले सिर्फ दो और दो चार जोड़े जाते हैं, फिर दो और दो चार रुपए जुड़ने लगते हैं, और जिंदगी चल पड़ती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। हमें लगता है कि जिंदगी का सवाल मानो हल हो गया। ये जो पैसे का पांच में पांच जोड़ना आ गया तो लगता है जिंदगी का सवाल बिल्कुल हल हो गया, दुकानदारी अच्छे से चला सकेगा, बेटा बहुत ज्ञानवान हो गया, जरा भी नहीं चूकता, किसी को 10 पैसे कम दे देगा, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत ज्ञानवान हो गया। और हमने शायद इसी को ज्ञान समझा था, पर आज तो बैठे बैठे ये लग रहा था, वैसे तो हमेशा ही लगा करता है बैठे बैठे खाली बैठे रहो तो ऐसे ही लगता है, और इसलिए कहता हूं कि कभी खाली बैठ के देख कि जिंदगी का गणित कितना सरल है। यहां तो कुछ जुड़ता है तो वो जुड़ता नहीं घट जाता है, यहां तो 100 बरस अगर जुड़ते हैं, 100 सांसें अगर जुड़ती हैं, तो समझ लो अब एक तो एक में से एक और रह गया, बाकी 100 तो निकल गया। यहां तो जितना जुड़ता जाता है, जितने वर्ष जुड़ते जाते हैं, जितनी सांसें जुड़ती जाती हैं, उतना घटता जाता है। और यहां कोई अगर घटना घट जाए, जिसको अपन कहते कि घटना घट गई, तो वो घट भी जाए तो जिंदगी इसके साथ ऐसी जुड़ जाती है कि फिर अलग नहीं होता। यहां का गणित ही अलग है, यहां घटता है तो लगता है जुड़ रहा है, यहां तो जुड़ता है तो उल्टा ही होता है, घट जाता है। ऐसी जिंदगी के बारे में आज कुछ जानने के लिए बैठे हम लोग, क्या जान पाएंगे हम ऐसी जिंदगी के गणित के बारे में? पर है जिंदगी के गणित का भी हल है। जिंदगी का गणित एक बार समझ में आ जाए कि यहाँ एक और एक मिलकर के दो हो सकते हैं, और यहाँ एक और एक मिलकर के अनंत हो सकते हैं, शायद ऐसी कोई गणित आपने नहीं पढ़ी। एक और एक मिलकर के संसार बच सकता है पूरा, और एक मिलकर के मोक्ष हो सकता है पूरा, बस इतने ही गणित, दो का गणित। दो मिलते हैं, संसार बनता है एक आत्मा, और दूसरा अगर परमात्मा मिल जाए तो मोक्ष बन जाता है। 1+1=2 एंड मोर, पर नॉट इनफिनाइट। और लाइफ के साथ ये है कि यहां पर एक के साथ कोई एक जुड़ जाए, वो परमात्मा का सहारा, तो अनंत होने में देर नहीं लगती। आज तो बस वही टेक्निक, वही कीमिया, वही एल्केमी आप सीख लेनी है, जिससे कि एक से एक जोड़ने के बाद अनंत हो जाता है। आज वही तपस्या है जिसकी शुरुआत करनी है, जिससे कि एक से एक मिलकर के अनंत हो। तपस्या की शुरुआत करनी है, पर हमने तो ये मान के रखा था कि ये हो ही सकता। और जब जिस किसी चीज को ये मान के ये तय करके चलो कि हो ही नहीं सकता, तो ये भी तय करके चलना कि वो कभी नहीं होगी। मैं पूरी बात तो कभी बोल ही नहीं सकता, अधूरी बोल रहा हूं, कल हो सकता है कि इसको बदल दूंगा। मजा तो यही है कि पूरी बात कही नहीं जा सकती, और हम इस धोखे में रहते हैं कि पूरी बात हम कर रहे हैं, तो हम ऐसे किसी धोखे में नहीं, और आप भी धोखे में नहीं रहना कि पूरी बात कह रहा हूं और इसमें गलती निकाली जा सकती, मैं कल फिर अपनी गलती बता दूंगा कि ये अधूरी बात कही। तो मैं आपसे बात कर रहा था असंभव की, कि किसी चीज को अगर ये मान लो कि नहीं हो सकेगी तो फिर वो कभी नहीं हो सकेगी। अंधा आदमी अगर ये कहे कि प्रकाश नहीं होता तो ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। कह सकता है अंधा आदमी प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब सत्य की आंख को पालने वाला आदमी, जब श्रद्धा की आंख को पालने वाला आदमी भी ये कहता है कि तपस्या नहीं हो सकती, तब जरा लगने लगता है कि या तो इसकी आंख नहीं खुली है और या फिर कहीं कोई धोखा। जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना। जब सत्य की आंख खुल जाती है और जब तपस्या दिखाई नहीं पड़ती कि तपस्या से कुछ हो सकता है, तो या तो यह समझना कि कहीं कोई धोखा हो रहा है, या फिर यह समझना कि भी आंख नहीं खुली है, और ये वाली आंख बंद रहे या खुली रहे ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। कोई अगर अंधा भी कह दे तो ज्यादा चोट नहीं पहुंचती, लेकिन कोई अगर ये कह दे कि तुम्हारी श्रद्धा की आंख नहीं खुली है तो जरा ज्यादा चोट पहुंचती। इसलिए मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा कि अगर तपस्या नहीं दिखती है, अगर कोई परमात्मा नहीं दिखता है, तो जरा अपनी आंख टटोल के देख लेना श्रद्धा की खुली है कि नहीं खुली। अंधापन तो नहीं, मैं अंधा नहीं कह रहा हूं आपको, अंधा नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये आपको ख्याल करा रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको धोखा हो गया हो कि भीतर भीतर कहीं सत्य की आंख खुल गई हो और बाहर से परमात्मा बिल्कुल ना दिखता है। पर यह तय है कि जिसकी भीतर की आंख श्रद्धा की खुल जाती है, उसको तपस्या दिखने लगती है, उसको परमात्मा दिखाई देने लगता है। बस सिर्फ इतनी सी बात कहीं बांध करके रख लेना, एक बात हो गई। आज तो गणित की बात है, तो एक एक बात करके बांध करके रखते चले जाना। और अगर कभी बैठ करके घर में और सबको जोड़ करके कुछ बन सके तो बना लेना, वरना जिंदगी इतनी टूटी टूटी है कि कभी जोड़ने की कोशिश ही नहीं की हमने। आज फिर आपको टूटी टूटी बात कह के जोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि कभी जोड़ के इन सबको देखना। पहली बात खत्म हो गई, कहाँ से शुरू करें? ये तो तय हो गया कि श्रद्धा की आंख, सत्य की आंख जिसके खुल गई है उसको तपस्या देखने लगती है, उसको तपस्या से परमात्मा दिखे, ये तो तय। कहाँ से शुरू करें? अब दूसरा प्रश्न तो आके खड़ा हो जाएगा कि कह तो दिया कि तपस्या हो सकती है, हो सकती तो शुरू कर दें। ऐसे तपस्या शुरू नहीं की जा सकती, तपस्या शुरू करने के लिए किसी की मदद चाहिए। किसी की मदद चाहिए, वो कहां मिलेगा? करो सत्संगति, करो, ढूंढो साथी को। कौन आदमी है जो कि, कौन आदमी है? जरूरी नहीं है कि कोई एक ही आदमी हो जो कि सबको अपनी उंगली पकड़ा के चला सके, हो सकता है आपका कोई दूसरा हो। सत्संगति करो, साधुओं के बीच में बैठो और बैठ करके उसमें से खोजो कि किसके चरणों में अपने को समर्पित किया जा सकता है। जब तक समर्पित नहीं हो पाओगे तब तक तपस्या शुरू नहीं होगी। परमात्मा के चरणों में तब तक समर्पित कर देना बहुत सरल लगता है ना, वहां पर अहंकार को जरा भी चोट नहीं पहुंचती, वो तो पत्थर है ना, क्या कहेगा। लेकिन किसी जिंदा आदमी के सामने समर्पण करने में बहुत तकलीफ होती है भाई साहब, बहुत तकलीफ होती है। हमारे जैसा हूं बहू, जैसा मैं दिख रहा हूं, खाता पीता ये भी है, राग देश इसके भी अभी पूरी तरह से गए नहीं है, ऐसे आदमी के सामने अपने आप को समर्पित करना और उसके पीछे पीछे चले चलना, चुपचाप कुछ नहीं बोलना, बहुत मुश्किल लगता है। परमात्मा के सामने समर्पित होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्या कहेगा वो, कुछ भी करते रहो बेचारा गरीब आदमी। हाँ, गरीब आदमी कह रहा हूँ, देख वो बहुत अमीर आदमी है जो जितना बाहर से गरीब दिखता है ना, जिसके पास कुछ नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, वो उससे ज्यादा अमीर होता। हमारी तो परिभाषाएं ही ऐसी, हम उसके सामने अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कहीं पहले किसी जिंदा आदमी के पास अपने आप को समर्पित करना होता, उसके बाद तपस्या शुरू होती। तो अपने को किसी गुरु के चरणों में जाकर के सत्संगति में बैठ करके समर्पित करना, वहां से यात्रा शुरू होती। वाह, इसमें क्या बात है, क्या जरूरत है कि किसी के चरणों में जाकर के हम शुरू कर लेंगे? उपादान की हमारी ताकत है, क्या आवश्यकता है किसी निमित्त? लेकिन जब छोटे बेटे थे ना, तब इतनी अकड़ के चले होते, इतनी अकड़ की बातें आज ना कर पाते। इतने अकड़ के अगर उस छोटे से 2 वर्ष के थे ना, जब इतने अकड़ के चले होते कि जी लूंगा अपने आप, किसी माँ पिता की जरूरत नहीं है, तो शायद आज इतने अकड़ के बोलने की ताकत भी नहीं आ जाई होती।
وہ دودھ اگر نہیں پلاتی نا, تم نے تو بہت کوشش کی تھی کہ نہیں پیئیں, بہت کوشش کی تھی نہیں پیئیں گے ہم, ہم کو نہیں بھاتا, اور بھاگ گئے تھے کھیلنے کے لیے, ہم بھی بھاگ جاتے تھے, ہم کو نہیں بھاتا, لیکن اس کو معلوم تھا کہ بھانے نہیں بھانے کا یہاں کوئی پریوجن نہیں ہے, یہاں تو زندگی کا سوال ہے, اگر نہیں پیے گا تو مر جائے گا. اس نے پوری چنتا کر کے, کھوج خبر کر کے, کھوج کھوج کر کے ہمیں لائی تھی اور دودھ پلا. گرو اور ششیہ کا سمبندھ کسی ماں اور بیٹے کے سمبندھ سے کم نہیں ماننا, وہ کھوج کھوج کے ہمارے بھیتر کتنی کتنی طاقتیں بھری ہوئی ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے, اور ان میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے. ضد مت کرنا, لیکن ماں کے سامنے ضد بھی کرتا ہے بیٹا کہ اور پلاؤ دودھ, ایک طرف تو کہتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں پیوں گا, نہیں لینا ہم کو, ایک طرف تو ششت جا کر کے گرو سے کہتا کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا, اب ہم نہیں کریں گے کچھ, تو سمجھاتے ہیں پریم سے کہ کرنا تمہیں ہی ہے, کرو گے تم, ہمارے چلے تم نہیں پہنچنے والے. کبھی کبھی ضد کرتا ہے کہ یہی دے دو, کئی لوگ ضد کرتے ہیں آ کر کے کہ ہمیں تو 1234 اپواس دے دو, 1234 ایک آسن دے دو, لے لو بھیا, لینے میں کون دیر لگتی ہے, لینے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن کرنے میں ساری زندگی لگ جائے گی, تو ذرا پہلے سوچ لینا, میں تمہاری شکتی جان رہا ہوں. تو گرو کے سانندھ میں کوئی ورت لینا, ضد کر کے مت لینا, اپنی شکتی مت چھپانا, شکتی کو بنا چھپائے اور شکتی کا الگھن نہ کیے بغیر برتوں کی شروعات ہوتی ہے, اور شروعات گرو کے چرنوں میں ہوتی ہے. یہ بات کی بالکل طے ہو گئی, اس کو گانٹھ باندھ کر کے دوسرے نمبر پر ڈال دیں, اور جب گرو کے چرنوں میں اپنے آپ کو سمرپت کر دیا ہے تو یہ جو سمجھداری ہے, اب سوچنے سمجھنے کی یہ جو طاقت ہے نا, ان کے حوالے کر دیں. مندر کے دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے ہو تو من کا بوجھ وہیں اتار کے رکھ دینا, پھر بھیتر پرویش کرنا, ورنہ بار بار یہ بھگوان کے سامنے پہنچتے ہی ساتھ کیڑا کل گلائے گا کہ پتھر کا ہے. تو کبھی اگر سمجھداری دے کر کے, زیادہ سوچ سمجھ لے کر کے گرو کے سامنے جاؤ گے تو گرو کو پتا نہیں کبھی کچھ کرتے ہوئے دیکھو اور من میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ یہ اس کے پاس تو گڑبڑ آ گئے, اب آ گئے, اب گڑبڑ کا کوئی سوال نہیں ہے, یا تو پہلے سمجھ لینا تھا آنے سے, لیکن اب گڑبڑ کا سوال نہیں ہے, اب تو جیسا ہے ویسا, اب میرے کان نہیں سنتے, اب اس کے کان سنتے, اب میری آنکھ نہیں دیکھتی, اس کے آنکھ دیکھتی, اب میں نہیں بولتا وہ بولتا. جب ایسا ہو جائے تب تب کی شروعات ہوتی, زیادہ سمجھداری پھر نہیں چلتی, سمرپن کے بعد کوئی ترک نہیں چلتا, سمرپن سے پہلے جتنے ترک کرنا ہے کر لینا, جتنی پریکشا کرنا, کیا کرو گے پریکشا, گرو کی پریکشا کرو گے, گرو کی پریکشا ہو ہی نہیں سکتی, جو پریکشا کرنے جا رہا وہی نہ گرو ہو گیا, آپ کیا ملے گا گرو, جو پریکشا کرنے جا رہا وہی تو گرو ہو گیا نا, اب کیا ملے گا گرو, اس کو گرو نہیں ملے گا, وہ تو ششیہ بن جائے اگر تو گرو مل جاتا, ششیہ بن کے جایا جاتا تب اس ششیہ کی آنکھ سے گرو دکھتا ہے, گرو کی آنکھ سے کبھی گرو نہیں دکھتا, گرو کی آنکھ سے تو اپنی آنکھ دکھتا کہ نہیں بڑا. ایسے کسی دھوکے میں نہیں رہنا, ورنہ اسی جیسا ہوگا. میں قصہ ہمیشہ سناتا ہوں, وہ بالا کی بیٹری میں ایک آدمی بھرتی ہوا تھا, اور جب آرڈر دیا گیا اس کو کہ بائیں طرف مڑو تو بھائی صاحب مڑے نہیں, اور جب وہ پہنچے ان کے پاس کہنے آپ کیوں نہیں مڑے, کہنے سوچ رہا تھا کہ مڑنا ٹھیک ہے کہ نہیں, کہنے تو جاؤ آپ یہاں نہیں چلے گا, یہاں تو بائیں مڑو یعنی بائیں مڑو, یا تو ملٹری میں بھرتی مت ہو, ورنہ بھرتی ہوئے ہو تو جیسا کہوں گا ویسا کرنا پڑے گا. خیر اس کو نکال دیا ملٹری میں سے, لیکن کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی مدد کری اس کی لوگوں نے, کہ بھائی بےچارا غریب آدمی ہے, ملٹری میں سے کام کا نہیں ہے لیکن رسوئی گھر میں کام آئے گا, تو رسوئی گھر میں اس کو بھیج دیا گیا تھا. آپ نے کہانی سنی ہوگی, پھر سے ریوائز کر دیتا ہوں موقع پر, اب دوسرے ڈھنگ سے کبھی ٹیلی کر کے دیکھنا کہ ویسے ہی سنا رہا ہوں کہ بدل دیتا ہوں, کہانی تو کہانی ہے, جس طرح سے کہو اسی طرح سے کہی جا سکتی. رسوئی گھر میں کام سونپا گیا تھا, اس کے لیے کچھ مٹر کے دانے دیے گئے تھے کہ بھیا کچھ چھوٹے چھوٹے مٹر نکلیں گے, کچھ بڑے بڑے مٹر نکلیں گے, ایسا کرنا چھوٹے مٹر ایک طرف رکھتے جانا, بڑے مٹر ایک طرف جان کرتے جانا, کہنا ایسا تو بنے گا, بن جائے گا آپ جو. جس کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو یہی بولتا ہے نا,
जिसको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा है।
अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने भरोसे गाड़ी नहीं चलती जब तक कि अपने पूरे ना हो जाओ। अधूरा आदमी अपने भरोसे नहीं चलता, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, अभी पूरे नहीं हुए। पूरे हो जाओगे तो फिर नहीं कहूंगा कि किसी की मदद से, लेकिन जब तक अधूरे हो तब तक ये मत कहना कि मैं अपने आप कर लूंगा। और उस आदमी ने यही किया कि उसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा, जाओ। और घंटे भर के बाद जब देखा गया तो मटर ज्यों के त्यों रखे हुए थे, चीले ही नहीं गए। पूछा भले आदमी क्यों नहीं चीले, कहते सोच रहा था। कह तो गए थे आप कि छोटे निकले तो ये तरफी, बड़े निकले तो ये तरफी, हमने सोची जो मजोल नहीं है वे कहां धर जा तो बताई नहीं। अब जो बीच वाले हुई है वे कहां रख, हम ये सोच रहे थे। हमने कि जब तक तय नहीं हो जाए कि बीच वाले कहां रखे जाए तब तक तीन वे से कब आए। अब तय तो पहले हो, तय तो पहले कर लिया कि मैं नहीं रहा आप रह गए, मैं नहीं रहा, ये तो तय पहले हमने कर लिया था। गुरु के चरणों में तपस्या शुरू करने से पहले ये तय कर लिया था कि इस आदमी के कदमों में बैठ करके तपस्या शुरू करूंगा और ये जैसा कहेगा वैसा कहूंगा, अपने मन की बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, वरना शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। चलो बहुत सारी बातें होंगी, तीसरी बात भी हो गई, और हैं और भी बहुत सारी बातें, पूरी तो होंगी नहीं। अधूरी सोच के आया था और उसमें से भी पूरी नहीं होगी ये बात। जिंदगी पूरी लेके आते हैं कम से कम 70% तो मर जाते हैं, ये भी तय है, क्योंकि हम इतना कुछ कर रहे हैं कि अपनी आयु में से बरस घटा लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने शोरगुल में बैठे हैं कि किसी ने दिखा है ज्यादातर शोरगुल में बैठो तो अपनी जिंदगी में से 2 बरस कम कर लेना। ज्यादा दौड़ धूप में लगे हो, ज्यादा चिंता में लगे हो तो अपनी जिंदगी में से 5 बरस कम कर लेना। ऐसे उसने हिसाब लगाया है कि 100 बरस लेके आए थे तो अब 40 बरस तो आपके इसी में निकल, 60 ही समझना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि पूरी बात तो नहीं कर पाऊंगा, 3 बातें हो गई, अभी तक सांस चल रही है। मैं तो ये देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, अभी तक सांस चल रही है। चौथी बात शुरू करते हैं वो ये कि काय के लिए कर रहे हो ये सब झगड़ा, तपस्या वपस्या होने वाला क्या है, मकसद क्या है, क्या ऐसे क्या मिलेगा, क्या कभी सोचा? हाँ, काय के लिए कर रहे हो, इतनी परेशानी में क्यों पड़ रहे हो, आए हो तो तरीके से रहो और जियो, खाओ पियो मौज करो। अरे इसमें क्या रखा हुआ है कि जो मिला उसको छोड़ो, वाह बुद्धि मानी जी की बात होती है। हाँ, ऐसे प्रश्न बहुत सारे मन के अंदर। ये संस्कारों का संस्कार बड़ा विचित्र संस्कार है। हाँ, ऐसा मन कहेगा, कई कई बार कहेगा, मेरा मन भी कह देगा, आपका भी मन कहेगा, आपको दोष नहीं दे रहा, मेरा भी मन आपके मन के ही जैसा तो है, अभी कौन ज्यादा सुधर गया। एक व्यक्ति किसको पढ़ रहा था कि कौन दूध का धुला है, दूध का काम थोड़ी किसी को धोना, धोबी थोड़ी है दूध, वो है कभी पढ़ रहा था, उनको याद नहीं आ रहा नाम, भवानी प्रसाद जी मिश्र को पढ़ रहा था कि कौन यहाँ दूध का धुला है, और अगर दूध का धुला भी है तो दूध का काम थोड़ी जो भी कहेगी वो किसी को धोता फिर व्यंग है। तो अपने मन की इस तरह की हमारी कुटेव है कहना चाहिए, हमारी माया इस तरह की मन की है, तो वो मकसद पूछता है। बुद्ध से मकसद पूछा गया था, मेरे से मकसद पूछा गया होता तो मैं तो कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि मैंने तो मकसद उसके जन्म में छोड़ दिया था जो इन दिनों में कुंडलपुर में बैठा हुआ है। मकसद मैंने उनके चरणों में छोड़ दिया था कि मुझे क्या करना है ये मैं ही नहीं जानता, मुझे जितना करना था उतना मैंने कर लिया, अब उसके बाद का मेरे जिम्मे नहीं है, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर मैं अपने हाथ में जिम्मेदारी ले लूं तो फिर ठीक है, उसकी क्या जरूरत। ये गणित ऐसे समझ में नहीं आएगा भैया, बहुत सीधा गणित नहीं है, आज तो गणित की बात है, ये गणित बहुत टेढ़ा, कभी इन पर सोच ना बैठ करके। तो मकसद की बात चली, बुद्ध से किसी आदमी ने जाकर के पूछा कि आपने ये तपस्या करी आपने क्या पाया। बुद्ध बोले, हंसने लगे, बोले पाया वाया तो कुछ नहीं। अरे कहने लगे बुद्धू हो फिर तो,
हम भी यही कहेंगे, अगर हम होते तो हम भी यही कहते कि बुद्धू हो, पाया वाया कुछ नहीं और इतनी परेशानी में इतना झगड़ा, तो ये मेहनत काहे के लिए करते रहे। बोले पाना क्या है, वो तो पहले ही से था, कुछ खो जरूर दिया। अरे अब तो जरा घबराया वो आदमी, अभी पहली बार तो कहा था कि कुछ नहीं पाया, पाना भी क्या है, वो तो पहले से ही है, अब कहता है कि पाया वाया कुछ नहीं है, खो जरूर दिया है। इतनी मेहनत करते रहे आप खोने के लिए, तो आपको जब कुछ नहीं मिला, आप जब जिंदगी भर खोते ही रहे हो, सब खो दिया, काय के लिए उपदेश करते हो आप, काय का उपदेश करते हो? बोले भैया यही उपदेश करते हैं कि तुम भी कुछ खो दो, इसी बात का उपदेश करते हैं कि तुम भी कुछ खो दो, क्योंकि ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, जब खो दिया मैंने तब मालूम पड़ा कि वो तो जो मेरा था वो तो मेरे पास पहले से ही था। ये जो इसलिए अभी भी कह रहा हूं कि मैंने पाया कुछ नहीं है, मैंने खो दिया है, मैंने पाया कुछ नहीं है, जो बाधाएं बीच में ये मालूम नहीं पड़ पा रहा था कि मेरा मेरे पास है, उसके बीच में कुछ बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं पर मैंने खो दी हैं, इसलिए अभी फिर से कहता हूं कि मैंने कुछ पाया नहीं। लेकिन आज तो हम कहते हैं कि हमने पा लिया, पाना क्या है, वो तो हमारे पास है ही, लेकिन बिना खोए हुए कहते हैं हम। बुद्ध क्या कह रहे हैं, खोने के बाद मालूम पड़ा था मुझे कि पाना क्या था, वो तो था ही मेरे पास, बाधा हट जाने के बाद मालूम पड़ा था, लेकिन हमारी तो बाधाएं हमारे साथ में है, हमारे सपने तो हमारे साथ में, इसके बाद भी हमें लगता है कि हमने पा लिया है, पाना क्या है, वो तो हमारे पास ही है। तो फिर से बुद्ध ने कहा कि पाया वाया, फिर से कहता हूं कि पाया कुछ नहीं। बोले जब पहले से ही था तो अभी तक मिला क्यों नहीं? हमारे प्रश्न कितने होते हैं, बहुत प्रश्न, वो चूका नहीं प्रश्न करने। तो उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो पहले से ही था तो अभी तक मिला क्यों नहीं था? बोले बस अब आ गए तुम सही रास्ते पर, इतने ही तो बताना था मुझे तुम्हें कि जो तुम्हारे पास है वो अभी तक क्यों नहीं मिला, वो सिर्फ हमारी कामनाओं के भीतर ढक गया है, वो हमारी इच्छाओं के भीतर ढका हुआ है, वो हमारी वासनाओं के भीतर ढका हुआ है। और जिस रोज ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये वासनाएं टूट करके गिर जाती हैं, उस रोज वो वहीं पर है और वहीं के वहीं दिख
जाता है।
Thank you.
की कोई हल्क हो जाए तो काम हो जाते
बहुत
अब बेटर है।